महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की, अपन पिछले दिनों से लगातार अनुपेक्षा या भावना के बारे में विचार कर रहे हैं। भावना हमारे भावात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। हम भावना और विचार इन दोनों में जीते हैं। विचारों को जब हम संतुलित करते हैं, जब हम विचारों को दिशा देते हैं, उनके साथ हम अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं, तब वो विचार समीचीन हो जाते हैं। विचार ही हमें पतन के लिए कारण बनते हैं, विचार ही हमारे उत्थान के लिए कारण बनते हैं, क्योंकि विचार ज्ञान की परिणति है और ज्ञान को जल की उपमा दी गई है, इसलिए विचार भी जल की तरह हैं। जो अगर मिट्टी में गिर जाते हैं तो वे ही कीचड़ बन जाते हैं, और अगर कीचड़ लग गया हो तो वही पानी उस कीचड़ को धो भी देता है। विचार जो पतन की तरफ ले जाने वाले हैं, अगर थोड़ा सा संभाल लिया जाए तो वे पतन से बचा करके उत्थान की तरफ भी ले जा सकते हैं। इसलिए विचार बहुत कीमती चीज है, और ऐसा विचार जो भावनाओं से समृद्ध है, जो भावनाएं जिसके साथ में है। विचार भावना कब बनता है? जबकि विचार को टेम्पिंग किया जाए, जबकि विचार बार बार हो किसी भी चीज का। इसलिए अनुपेक्षा यह काम करती है कि हमें हमारे विचारों को भावना से जोड़ करके और उन्हें समीचीन बनाती है। विचार अगर व्यक्ति के मजबूत हो तो माना जाता है कि व्यक्ति की संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति भी बहुत प्रबल है। इच्छा शक्ति बढ़ाने की अगर कोई प्रक्रिया लोग बार बार पूछा करते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति या कि हमारी संकल्प शक्ति, विल पावर जिसको कहते हैं, वो कैसे बढ़े, विल पावर बढ़ती है अनुपेक्षा के द्वारा। जब एक ऐसी समझ जिसके साथ हमारी अनुभूति जुड़ी हुई है, वो हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाती है। उपवास करने का मन तो होता है पर हिम्मत नहीं पड़ती है, क्या उपाय है? उपवास के बारे में अपने विचार हम बदल दें, क्योंकि हमारे विचार उपवास के बारे में ये है कि हमने कई लोगों को उपवास करके और शाम को तकलीफ पाते हुए देखा है, या कि आपको विकल होते देखा है, और हमारे भीतर एक विचार बन गया, पर वो विचार इतना अधिक गहरा में चला जाता है कि फिर हम कभी उपवास की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हम क्या करें? इस विचार को परिवर्तित करें। हम अपने अनुभव से देखें, हम अपने अनुभव, हमारा अनुभव तो है ना उपवास का, क्या करेंगे? आज 11 बजे तक तो मैं वैसे ही खाना नहीं खाता हूं, आज 12 बजे तक नहीं खाऊंगा, एक घंटे देखता हूं क्या फर्क पड़ता है। मैं देखता हूं कि 12 बजे तक मैं नहीं खाऊं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैं 3 बजे दोपहर तक नहीं खाऊं तो देखूं क्या होता है, नहीं खाऊंगा तो मैं देखता हूं कि 3 बजे दोपहर तक भी मैंने नहीं खाया तो कोई विशेष फर्क नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं 6 बजे शाम तक नहीं खाऊंगा आज, तो यह नहीं सोच रहा हूं कि मैंने 12 घंटे से नहीं खाया है, नहीं, 3 बजे तक तो मैं वैसे ही सोच दिया था कि नहीं खाना है, 3 घंटे और, 11 बजे तक तो वैसे नहीं रहता था, 1 घंटे और, 12 बजे तक नहीं खाया, कौन सी विशेष बात हो गई? और मैंने शाम तक देखा कि 6 बजे तक मुझे कोई अकुलता नहीं हुई, अब रात ही तो बाकी रह गई है, दिन तो निकल ही गया है, रात में तो मैं वैसे नहीं खाता हूं, रत्न भोजन का तो मेरा त्याग ही है भाई, पहले से ही है मेरा ये संकल्प, और मैंने रात भी निकाल दी। और सुबह सुबह अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या उपवास करना आसान है, मैं बहुत ठाट के साथ, बहुत हर्ष के साथ कहूंगा कि बिल्कुल आसान है। और इसके पहले अगर कोई पूछता मुझसे तो मैं कहता कि बहुत कठिन चीज है, इसमें मत पढ़ना तुम। ये मैंने देखा है कि लोगों को शाम को हमारी विल पावर कैसे बढ़ गई, किसने बना दी? अंडरस्टैंडिंग इज विजुअलाइजेशन। हम ऐसी जानकारी हासिल कर रहे हैं जो हमारे अपने अनुभव से प्राप्त हुई है, हमारे बार बार विचार करने से हमें प्राप्त हुई है। ऐसे हम अपनी संकल्प शक्ति को इन विचारों को सम्यक बना के, समीचीन बना के, अनुपेक्षा के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा लेता है वो इन अनुपेक्षाओं को ठीक ठीक जी पाता है। मानिएगा, संकल्प शक्ति अनुपेक्षा से बढ़ती है और अनुपेक्षा संकल्प शक्ति की भावना नहीं होती है, वरना पंखे के नीचे आराम से बैठ करके और 12 भावना पढ़ लेना बहुत आसान सी चीज है। लेकिन 12 भावनाओं से होकर के गुजरना, जो पिछले दिनों हम कह रहे हैं, जो पिछले दिनों से हम लगातार उस प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं, उस प्रक्रिया को आप गौर से देखें तो आपको लगेगा कि इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है कि 12 भावना जो राजा राणा छत्रपति है आराम से आकर के और पढ़ ली। और जब भी कोई पीड़ा हमारे शरीर पर या कि हमारे आसपास हमारे साथी पर या कि किसी भी जिस चीज को हमने अपना माना है उस चीज पर अगर पीड़ा आती है तो वो हमारे तक क्यों आती है? क्योंकि हमारी अनुपेक्षा मजबूत नहीं है, वो सिर्फ हमारे शब्दों तक है, वो हमारे भावनाओं तक नहीं पहुंच पाई है। हमने पिछले दिनों अनुपेक्षा करी किस बात की कि जो जो चीजें हमारे पास हैं देखें तो जरा वे कैसी हैं। मैं तो सोचता हूं बहुत दिन तक टिकेंगी, पर मैंने देखा, मैंने अपने अनुभव से देखा और अनुभव मेरा ऐसा कि मैं वाच करूं बहुत सजग होकर अनुभव कर रहा हूं ताकि वो अनुभव मेरी अपनी संपत्ति बन जाए, मैं उसे रख लूं। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके लाए, ढेर लगा के रख दे, क्या होगा, दो चार दिन के बाद सड़ जाएंगे, वो उनका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। आप कोई व्यक्ति माला बना ले तो कुछ दिन पहनी जा सकती है, सूख भी जाएगी तो भी बदबू नहीं देगी, इतना तो हो सकता है माला बनाने पर। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उन फूलों को इकट्ठे करके उनका एसेंस निकाल लेता है और अपने पॉकेट में रख लेता है, कई दिन तक जब चाहे वो निकाल ले थोड़ा सा और सूंघ ले और आनंद ले ले। हम अपने अनुभव को अनुपेक्षा के द्वारा एक ढेर नहीं लगाते हैं, नहीं, हम अनुपेक्षा के द्वारा अपने अनुभवों को एक माला में पिरो लेते हैं और इतना ही नहीं, हम उससे कोई एसेंस निकाल के अपने पास रख लेते हैं। जब कभी कोई ऐसी घटना घटित होती है हम फौरन निकाल लेते हैं उसको, एसेंस को। हम अपने अनुभवों को अगर इस तरह से संचित करें, मैं देखता हूं कि मेरे चारों तरफ जो कुछ भी है मैं उसे शाश्वत मान के चलता हूं पर वो नष्ट हो जाता है, मैं देखता हूं कि जिसका सहारा खोजता हूं वो मुझे छोड़ देता है और वो उसकी मजबूरी है। बेटा कितना सहारा दे सकता है मां को, आखिरी समय दवाई दे सकता है, पानी दे सकता है, सांस तो नहीं दे सकता। मैं शरण खोजता हूं लेकिन ये सारे लोग मजबूर हैं, मुझे अंततः अशरण कर देते हैं, मुझे इनकी शरण नहीं देनी है। फिर मैं संसार की तरफ आंख फैला के देखता हूं तो जिस संसार में मैं रहता हूं उस संसार के बारे में मुझे जानना चाहिए कि ये सिर्फ एक आने जाने का क्रम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और आने जाने के क्रम में कितनी पीड़ा होती है ये भी मैं इस बात का एहसास करूं, हालांकि मुझे इस पीड़ा का एहसास नहीं है कि जब मैं आया था तब कैसी पीड़ा मैंने भोगी थी, मैं भूल जाता हूं। जाते समय भी मौत आने से पहले मैं घबरा के मर जाता हूं, उस पीड़ा का एहसास करने से डरता हूं, पर इसका अर्थ है कि होती तो पीड़ा है जन्म की भी और मरण की। यह संसार सिर्फ जन्म मरण की पीड़ा और बीच में बुढ़ापे की और बहुत सारे अभावों की पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं है। मैं ऐसा संसार के बारे में विचार करता हूं, निरंतर विचार करना पड़ेगा 24 आवर्स। जैसे कि अभी यहां पर कोई बच्चा रोए तो आपके मन में क्या विचार आएगा, उठाओ उसको बाहर करो। और आप उसी में ये ला सकते हैं कि जब मैं ऐसा था तब मैं भी ऐसा ही रो पड़ता था और मां मुझे संभाल लेती थी, और फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया मैं उसी मां के प्रति कितना दुर्व्यवहार करता चला गया। अरे यही संसार है, हो गया काम, इतना ही पर्याप्त है। अरे यही संसार है, यहां पर एक दूसरे के प्रति मोह के वशीभूत होकर के और हम उपकार अपकार सब करते हैं और अंततः जो है दुख ही पाते हैं, ये संसार है। ऐसा विचार और कुछ रटा रटाया नहीं भैया, कि वो जो दो लाइनें लिख दी हैं बस उतनी विचार करना है अपन को, कि 12 भावना में जो दो लाइन लिखी हैं कि चौं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं सुख में बैठे, कोई से पूछे कि पंच परिवर्तन को स्वरूप क्या है, चार गतियों को स्वरूप का है, सो पूछेंगे बैठ कर। लेकिन हम तुरंत विचार कर सकते हैं ऐसी छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के, संसार के बाबत विचार कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपनी स्वाधीनता का विचार। मैं एक अकेला हूं लेकिन असहाय नहीं हूं, मैं साधु हूं, मैं चाहूं तो अपना कल्याण कर सकता हूं, मैं चाहूं तो अपना पतन तो कर ही रहा हूं। यह स्वाधीनता का विचार ये चौथी भावना है। और जो कुछ भी मेरे आसपास है वो मेरे से पृथक है, इस बात का भी विचार करना पड़ेगा। अभी तो मैं एक नेक होकर के मान लेता हूं कि जो जो चीजें हैं, शरीर तो मेरे एकदम निकट है, मैं उससे अपने को पृथक मान ही नहीं पाता हूं। तो मैं विचार करता हूं, निरंतर विचार करता हूं कि नहीं, शरीर अलग है, मैं इसे लिटाता हूं, मैं इसे खिलाता पिलाता हूं, मैं इसे नहलाता धुलाता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये नहीं हूं, ये मेरे से पृथक है। ऐसा निरंतर विचार करना, ये अपने अन्यत्व अनुपेक्षा में इस शरीर की अपवित्रता के बारे में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अपवित्र है। जो चीज जैसी है उसका वैसा विचार करना ही चाहिए, यही अनुपेक्षा का काम है। हम जो चीज जैसी नहीं है वैसा विचार करते हैं, या कि जो चीज जैसी है वैसा विचार नहीं करते हैं। अनुपेक्षा हमें दिशा देती है कि जो चीज जैसी है उसे वैसा विचार करिए, जो चीज जैसी नहीं है उसके बारे में भ्रम तोड़िएगा। ठीक ठीक विचार करने की प्रक्रिया है। तो अपवित्र है तो अपवित्र विचार करना पड़ेगा। फिर मेरे अंदर कुछ संस्कार पड़े हुए हैं, वे संस्कार कैसे आते हैं? क्या मैं ऐसे संस्कार हमेशा से लेकर के आ रहा हूं? हाँ, मैं ऐसे संस्कार हमेशा से लेकर आ रहा हूं। और क्या मेरे हाथ में है कि मैं इन संस्कारों को आने में सहयोगी बनता हूं, और मैं चाहूं तो इन संस्कारों को नहीं आने दूं? ऐसा कॉन्फिडेंस, अगर ऐसा विचार आता है कि ठीक तो है, मेरे सारे संस्कार मैंने बनाए हैं, मैं इन संस्कारों को रोज निर्मित कर करता हूं रोज रोज। चाहूं तो एक अपने तारों पर शील बना सकता हूं। मैं कम से कम बुरे संस्कारों को तो अपने भीतर नहीं आने दूं, इतना तो कर ही सकता हूं। अच्छे और बुरे दोनों नौ संस्कारों से मुक्त मैं हो सकता हूं, पर कम से कम पहले बुरे विचारों से मुक्त होने के लिए मैं कोई प्रयास करूं। क्या प्रयास हो सकता है? बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं। अब वो सारे प्रयास संदर्भ में आ जाते हैं कि आप कैसे अपने संस्कारों को रोकते हैं, कैसे संसार के जो संस्कार हैं उन संस्कार कैसे संस्कारों को पाने के लिए कैसी झलक हमारे भीतर होना, यह हम आसानी से विचार कर सकते हैं। और जो हमारे अंदर संस्कार पड़ गए हैं, जो अनकॉन्शियस में हमारे डिपॉजिट हो गए हैं विचार, जो मिथ्या विचार हैं, जो मिथ्या धारणाएं हैं, जो बुरे कर्म हैं, क्या उनको मैं हटा सकता हूं? मैं हटा सकता हूं, हटाता ही हूं। वे अपने आप अपना फल देके चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं ऐसे में, जबकि वे अपना फल देके स्वयं चले जाते हैं। लेकिन उनके साथ एक चीज मैंने देखी, अपने अनुभव से कह रहा हूं आपसे, आप भी रोज देखिएगा कि जब जब ये कर्म उदय में आते हैं, अपना फल देते हैं, तो मुझे विचलित कर देते हैं। क्या इनमें ऐसी ताकत है? नहीं, इनमें ऐसी ताकत नहीं है। मैं स्वयं विचलित हो जाता हूं इनके उदय में। मैं अगर कोई बुरा कर्म उदय में आता हूं तो संक्रोशित हो जाता हूं, कोई अच्छा आता तो हर्षित होता हूं। और ये मेरा जो अहंकार और दीनता है ना, ये मुझे आगे के लिए और नए कर्म बांध के चली जाती। मैं क्या होता से बड़ी संबर और मेजरा की कोई प्रक्रिया नहीं है। बड़े से बड़ी प्रक्रिया अगर समता संबर और मेजरा करने की, संसार से पार होने की है, तो इन सब कर्मों के उदय में
सर्वमंगलमांगल्यं। सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शास्त्रिनम्। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। एक गांव में बहुत ही सदाचारी व्यक्ति था, दूर दूर तक उसका नाम था, लेकिन पाप के उदय से उसका आचरण खराब हो गया और गांव वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। कई स्थानों पर उसने शरण पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपकीर्ति ने उसे कहीं भी नहीं रुकने दिया। अंत में वह एक अपने बहुत पुराने मित्र के पास पहुंचा और उसने कहा कि अब मैं तुम्हारी शरण में आया। तो मित्र ने कहा कि इसमें शरण की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये तो तुम्हारा ही घर है, आराम से रहो। कोई भी मेहमान आता है तो आप लोग भी यही कहते हैं कि आइए बैठिए, आपका ही घर है, आप जब तक जी चाहे रुको। लेकिन जब वो दो तीन दिन से अधिक रुकने लगता है तो चिंता की बात हो जाती है और फिर आप उसको भगाने के उपाय सोचने लगते हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत बहुत प्रचलित है, पहले दिन जो आए वो भगवान, दूसरे दिन जो रुके वो मेहमान, और तीसरे दिन जो रुके वो बेईमान। तो तीन दिन के बाद जब वो जाने का नाम नहीं ले रहा था तो उसने बहाना बनाया और कहा कि ऐसा है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है एक हफ्ते के लिए। तो मित्र था, उसने कहा कि आप जाइए निश्चिंत होकर के, हम रुकेंगे तब तक। जब वो लौट करके आया तो उसने देखा कि उस मित्र ने तो पूरे मकान का रूप रंग ही बदल दिया। वहां पर उसने अपने नाम की तख्ती लटका ली। तब फिर उसने उसका कान पकड़ करके कहा कि ये मकान तुम्हारा नहीं है, बाहर हो जाओ यहां से। तो अभी तक जो कर्मों का आश्रय हो रहा था और जिन कर्मों को मेहमान समझ करके रोका गया था, उनके लिए आकर के कान पकड़ के बाहर निकालने का नाम निर्जरा है। कई प्रयोग होते हैं मेहमानों के लिए भगाने के, बहुत से लोग आते ही साथ उनके स्वागत करते हैं और कुछ लोग स्वागत किए बिना ही कह देते हैं कि भाई मुझे अब टाइम नहीं है, आप बात कर लीजिए। जो जितना अधिक रूखा व्यवहार मेहमानों के साथ करता है उतना ही अधिक मेहमान वहां पर ठहरने के विचार ही नहीं करता है। तो वहां पर गांव में बहुत से लोग मेहमानों को भगाने के उपाय खोजते रहते थे। एक जवाई साहब तो ऐसे थे कि वो ससुराल में 20-20 दिन रुके रहे, तो तंग आ गए जब सास ससुर, तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो योजना बनाई। जैसे ही जमाई साहब ने आकर के सूटकेस रखा तो उसने बहुत जोर से लठ फटकारा ससुर में। सास जो थी बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो मेहमान ने सोचा कि अब तो ये बहुत मुश्किल बात है, जब इनकी पिटाई हो रही हमारा और कुछ ना हो जाए। तो वो कहीं पर छिप गया तो ससुर ने कहा सास से कि क्यों ज्यादा जोर से लगी तो नहीं है? तो वो कहने लगे कि हम रोए तो नहीं है, मतलब पूरा अभिनय सही रहा। तो वो जवाई जो छुपा हुआ था वो निकल करके कहता हम भी भगे नहीं है। अगर कर्मों के साथ हमने सावधानी बरती, जो आगमन का द्वार था उसको बंद किया, तब कहीं जाकर के निर्जरा शुरू होगी। निर्जरा के लिए हमारे प्रयत्न नहीं होते हैं, क्योंकि हम जिन कर्मों का स्वागत करते हैं अगर हमने उनका स्वागत कर लिया तो ये मान करके चलना होगा कि वो कुछ दिन तो आपके घर में रुकेंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर स्वामित्व जमा लें, अपने नाम की तख्ती बाहर लटका दें, जैसा कि अनादिकाल से इस आत्मा के साथ होता आया है। कर्मों ने सिर्फ इसको अपने बंधन में जकड़ा ही नहीं है, बल्कि अपनी मालकियत भी लगा ली है। और हम शरीर किससे पहचाने जाते हैं, आत्मा की कोई पहचान हमारे पास नहीं रह गई है। निर्जरा का उपाय जो आचार्यों ने बताया वो यह है, निर्जरा तप के माध्यम से हुआ करती है। अगर जल के लिए 100 सेंटीग्रेड की ऊष्मा पर तपाया जाए तो वह भाप बन के उड़ने लगता है। अगर आयरन के लिए 1500 डिग्री के तापमान पर तपाया जाए तो वह जल के समान बहने लगता है। अगर उसी आयरन के लिए 2500 सेंटीग्रेड की ऊष्मा पर तपाया जाए तो वह भी वाष्प बन के उड़ने लगता है। जितनी अधिक तपस्या व्यक्ति करता है, कर्मों को उतना अधिक भागना पड़ता है। निर्जरा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति जैसे कमरे में झाड़ू लगाना चाहे, बाहर से बहुत हवा आ रही हो तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह से सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर झाड़ू लगाएगा तब कहीं अंदर में जो कचरा था वो बाहर निकलने के लिए तैयार होगा। अगर खिड़की और दरवाजे बंद नहीं किए गए तो ये बात तय है कि जो कचरा आप झाड़ना चाहेंगे वो तो आएगा ही लौट करके, उसके साथ नया कचरा भी आ सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि आश्रम के सारे द्वार, इंद्रियों की सारी खिड़कियां बंद करने के उपरांत ही आत्मा के अंदर जो कर्मों का कचरा छा गया है उसके लिए दूर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। निर्जरा का शाब्दिक अर्थ तो यही मानना होगा कि निज में ठहर जरा। जो व्यक्ति निज में थोड़ी देर के लिए भी रुक जाता है, ठहर जाता है, उसके अंदर का सारा कलमश कचरा साफ होता दिखाई पड़ता है। माताएं लोग रोटी बनाती हैं, तप के माध्यम से निर्जरा होती हैं, लेकिन तप के भी दो भेद किए गए हैं, एक अंतरंग और बहिरंग। जब रोटी बनाई जाती है तो उसको दोनों तरफ से सेका जाता है, तब कहीं जाकर के वो सुपाच्य बनती है। अगर हमें कर्मों की निर्जरा करनी है तो आत्मा के लिए तो तपाना ही है, साथ ही साथ देह को भी तपाना होगा, क्योंकि दूध को सीधा डायरेक्ट नहीं तपाया जाता है, उसको भगोनी में रखा जाता है। लेकिन आप यही कहते हैं कि दूध तपा रहे हैं, भगोनी को कोई खाली नहीं तपाता है। उसी तरह देह तो सिर्फ एक माध्यम है आत्मा को तपाने के लिए, और आत्मा को तपाने के लिए बहिरंग और अंतरंग तप जो है, अनशन, अनुदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और विविक्ति संयासन, ये बाह्य तप है क्योंकि सहजता में देखने में आ जाते हैं। और अंतरंग में जो तप है, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और विस्तर्ग, ये अंतरंग तप है। इन दोनों के माध्यम से तप करके आत्मा पूज्य बन जाती है। अगर माटी को तपाया नहीं जाता है तो वह कुंभ का रूप नहीं लेती है, पूज्य नहीं बन पाती है। अगर स्वर्ण जो कुंदन का रूप लेता है उसको 16 बार तपाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसकी किट्टिमा समाप्त हो जाती है और वह सबका स्नेहभाजन बन जाता है। अगर आप भी स्नेहभाजन बनना चाहते हैं तो अपनी आत्मा के लिए तपाना पड़ेगा। सारे जगत के लोग पूज्य आपके लिए तभी मानेंगे जब तप के माध्यम से कर्मों की जो निर्जरा, जिनको हमने मेहमान समझ करके ठहरा दिया था, उनको बाहर निकालेंगे। कोई माली आम लाता है, दो तरह के आम तौर पर आम देखे जाते हैं। पहला आम तो वह होता है जो कच्चा होता है, और दूसरा आम वह होता है जिसके लिए पाल में ढककर के तपाया जाता है। जो कच्चा आम होता है, जो अपने समय पर पकेगा, दो तरह के आमों में जो समय पर पकेगा उसको तो बहुत दिनों बाद खाने का स्वाद आएगा, लेकिन जो उपाय करता है और कच्चे आम को आसमान में पका लेता है वह उसके मीठे स्वाद का आनंद ले पाता है। निर्जरा के भी दो भेद किए गए हैं। पहला सविपाक है जो किसी काम का नहीं है, दूसरा अविपाक है जो आत्मा के लिए कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। सभी पाक मर जा तो मजबूरी बसात भी हो जाती है। जैसे दुकान पर ग्राहक अधिकार जो घर से टिफिन आया था वो आप खा नहीं पाए तो उस दिन एकासन हो गया, लेकिन एकासन का अर्थ थोड़ी है कि आपका तप हो गया या कोई निर्जरा हो गई, क्योंकि संकल्प तो था ही नहीं, आपने बुद्धिपूर्वक तो एकासन किया नहीं था, उपवास नहीं किया था। पर्युषण पर्व भी निर्जरा का संदेश देते हैं, लेकिन निर्जरा का संदेश दें उससे पहले ही हम उसकी तैयारी एक वर्ष पहले से शुरू कर देते हैं। जो लोग उस समय हरी वगैरह का त्याग करते हैं वो पहले से एक साल पहले से ही बटरा सब्जी भाजी लौकी वगैरह सब सुखा के रख लेते हैं, क्योंकि उस समय गीली हरी तो खाई नहीं जा सकती है, इसलिए उस समय सूखी हरी खाएंगे, क्योंकि हमारा हरी का त्याग है। तो लालसा तो हमारी छोटी नहीं, और अगर हम चाहें कि ये तप की श्रेणी में आ जाए तो ये तप नहीं है। कई लोग तो पर्युषण के बाद उनका वजन बढ़ जाता है, मोटे दिखाई पड़ने लगते हैं। आए थे तो पर्युषण आत्मा का संदेश देने के लिए, आत्म जागरण के लिए, लेकिन हम उन दिनों अपनी लालसा को कम नहीं करते हैं। अगर कोई सूखी हरी का भी त्याग कर देता है तो उसके बदले में काजू किशमिश की सब्जी खाने लगता है। इस तरह से कोई ना कोई इंद्रियों की लालसा को पूरी करने के लिए हम अपने उपाय ढूंढ लेते हैं, लेकिन इंद्रियों का निरोध जब तक नहीं होता है तब तक न तो संवर होता है और न ही निर्जरा होती है। इंद्रियों का निरोध करने वाला व्यक्ति ही एक दिन निर्जरा को उपलब्ध हो जाता है।